अमूषां क्षुत्परीतानां आर्तानां परिदेवितम् शमयिष्यामि मत्बाणैर् भिन्नायास्तव मेधसा अमूषां क्षुत्परीतानां आर्तानां परिदेवितम् शमयिष्यामि मत्बाणैर् भिन्नायास्तव मेधसा।
पद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त प्रजा को, जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रही है, संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का क्रंदन दूर करूंगा। तात्पर्य, यहां पर हमें थोड़ा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गोमांस खाने की व्यवस्था करे। यहां पर इंगित है कि विरली परिस्थिति में जब अन्न न हो तो सरकार गोमांस खाने की अनुमति दे, किंतु जब पर्याप्त भोजन रहे तो सरकार को चाहिए कि केवल जीभ के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति न दें। दूसरे शब्दों में, जब अन्नाभाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीभ की तुष्टि के लिए बूचड़ खानों को बनाए रखना और वृथा ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो सूखी अर्थात दूध न देने वाली गायों को भूखी जनता के भरण के लिए मार देना चाहिए। आवश्यकता के नियमानुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए, किंतु यदि इसमें असफल रहें तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्न उत्पादन होता है, अतः बूचड़ खानों के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार पर प्रतिबंध तथा लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। फलतः कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही नहीं उठे, बूचड़ खाने की आवश्यकता ही न पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न रहे। कृष्णा, जब पितु महाराज देखते हैं कि पृथ्वी माता प्रजा के पाप न करने पर भी पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं प्रदान कर रही है तो वो उनको डांटते ही नहीं हैं, उनकी भर्त्सना ही नहीं करते, बल्कि उनकी हत्या करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। हाथ में धनुष बाण लेकर अभी पृथु महाराज, पृथ्वी माता जिसने कि गाय का रूप धारण किया है, उसको धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारी वजह से प्रजा को इतना कष्ट हो रहा है, प्रजा भूख के मारे तड़प रही है, त्राही त्राही मच गया है उनके बीच में, और इनका कोई कसूर नहीं है, हालांकि ये लोग पाप नहीं करते, फिर भी तुम अन्न नहीं दे रही हो, तो तुम मेरे हाथों मरने योग्य हो। राजा का काम होता है उनको दंड देना जो कि दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और जो अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभाते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और तुम्हारे मांस को सारे भूखे प्रजा में बांट दूंगा। ये एक आश्चर्य की बात प्रतीत होती है, क्योंकि हम हमेशा मांसाहार का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, और खास करके गाय के मांस का, और ये सही है। तो प्रभुपाद जी इस बात की व्याख्या तात्पर्य में करते हैं। इसलिए हमें आचार्य के तात्पर्य आवश्यक होते हैं। अगर हम केवल शास्त्र पढ़ें तो जिनका हृदय शुद्ध है वो तो समझेंगे और भगवान के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन जिनकी श्रद्धा कम है, या श्रद्धा कम भी न हो लेकिन जो सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, वो गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए आचार्यों की टीका टिप्पणी से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसे ही बिल्कुल एक विरला ही, एक दुर्लभ अवस्था में ऐसे किया जा सकता है। साधारणतः मांस खाने की अनुमति नहीं दी जाती है शास्त्रों में। गाय के मांस की बात तो दूर है, साधारण किसी पशु के मांस को खाना भी एक पाप माना जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, परफेक्ट है, संपूर्ण है, कंप्लीट, उनमें कोई भी कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, और इसलिए जिन चीजों को वो बनाते हैं, जो भी उनसे उत्पन्न होता है वो भी संपूर्ण परिपूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। ईशोपनिषद में बताया गया है कि ओम पूर्णम अदः, वो पूर्ण है, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णम, ये भी पूर्ण है, ये भौतिक संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्णाम मतलब पूर्ण से, पूर्णात् उदच्यते, ये तो भौतिक सृष्टि है, ये भी पूर्ण है। संपूर्ण भगवान से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते, और जब उस पूर्ण भगवान से यह पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है तो जो रह जाता है भगवान के पास वो भी पूर्ण है। भगवान की संपूर्णता अनंत है, यह संसार की संपूर्णता जैसी नहीं है। जैसे कि अगर हमारे, ये उदाहरण कई बार दे चुके हैं कि अगर हमारे जेब में 100 रुपए हो, होते नहीं वैसे, लेकिन अगर हो भी, और अगर उस 100 रुपए में से आपको मैं 50 रुपए दे दूं या आप मुझसे ले ले, तो मेरे पास केवल 50 रुपए रह जाएंगे। लेकिन भगवान जब उनसे ये भौतिक सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तो इस सृष्टि के उनसे बाहर जाने से उनमें कोई घटन नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। जैसे कि हम भोजन करते हैं फिर काम करते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो हमारी शक्ति चली जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं, और फिर से हमें खाना पड़ता है, फिर से हमें सोना पड़ता है शक्तिशाली होने के लिए। तो ये संसार में नियम होता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, या कार्य न भी करें, केवल समय के प्रभाव से हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी शक्ति में, बुद्धि में इत्यादि घटन हो जाती है। इसलिए यहां की पूर्णता जो है वो बिल्कुल पूर्ण नहीं है। हम भोजन खा लेते हैं, अभी अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं, अभी तो हम पूर्ण हो गए, संतुष्ट हो गए, लेकिन वो संतुष्टि ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन भगवान की संपूर्णता वास्तविक संपूर्णता है, इसलिए जो भी उनसे उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण तो है ही, लेकिन साथ साथ में भगवान में कोई घटन नहीं होता है। ये है भगवान, ये है परिभाषा भगवान की, जो अनंत है, जिनसे अनंत पूर्ण अंश निकलते हैं। अनंत अंश जो है अपने आप में पूर्ण है, जैसे कि ये भौतिक सृष्टि अपने आप में पूर्ण है। भौतिक सृष्टि के भीतर कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो भी हर एक ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है। हर एक ब्रह्मांड के भीतर कितने सारे लोक हैं, ग्रह हैं, ये लोक भी अपने आप में पूर्ण हैं। और हर एक लोक के ऊपर कितने सारे और निवास स्थान है लोगों को, जैसे कि सागर है, सागर अपने आप में पूर्ण है। सागर के भीतर कितने सारे प्राणी रहते हैं, और ये सारे प्राणी अपने आप में खा पीकर सब मजे में रहते हैं। और फिर जमीन के ऊपर जो रहते हैं वो भी पूर्ण है, हवा में जो आकाश में रहते हैं वो भी पूर्ण है, यहां तक कि हर एक प्राणी का शरीर भी अपने आप में पूर्ण है। इस तरह से भगवान ने जो सृष्टि बनाई है ये अपने आप में संपूर्ण है। ये पृथ्वी माता भी एक संपूर्ण एक वस्तु है, क्योंकि इस पृथ्वी माता के ऊपर जो भी रहते हैं वो बिल्कुल अच्छे ढंग से रह सकते हैं। पृथ्वी के बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, केवल जो सूर्य और चंद्र की किरणें वगैरह आते हैं, लेकिन वो भी ब्रह्मांड के भीतर होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि भगवान संपूर्ण है और उनकी सृष्टि संपूर्ण है, मनुष्य के जीवन यापन के लिए कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। हम जब कहते हैं कि भोजन का अभाव है या उस चीज का अभाव है, यह गलत होता है। यह एक कृत्रिम चीज है, आर्टिफिशियल चीज है, जो हमारे पापों की वजह से उत्पन्न होता है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि भोजन नहीं है, अनाज की कमी है। वास्तव में ये सत्य नहीं है, अनाज की कमी बिल्कुल नहीं है दुनिया में। जैसे यहां प्रभुपाद जी बताते हैं, वो सत्य है कि लाखों बल्कि करोड़ों टन अनाज समंदर में फेंक दिए जाते हैं, अमेरिका में और दूसरे देशों में। उनके पास अनाज की अधिकता होती है। ऐसे कई देश हैं जहां अनाज का अभाव होता है, कमी होती है, लेकिन एक व्यापार के दृष्टि से, ताकि अनाज का भाव कम न हो जाए, या और एक झूठे राष्ट्रवादी के दृष्टि से वो सोचते हैं कि हमारे देश का जो बल है रहना चाहिए, दूसरे देश कमजोर रहने चाहिए। ऐसी सारी कृत्रिम भावनाएं जब आती हैं मनुष्य जीवन में, तब हम ऐसे घोर पाप करते हैं। अनाज का एक कण भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान की देन है हमारे पेट के लिए, जिससे कि हम अपना पालन पोषण कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। जो अन्न को फेंकता है उसको व्यर्थ गंवाता है, उसको आगे चल के किसी जीवन में भूखा रहना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग करोड़ों करोड़ों टन हर साल फेंकते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो लोग अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, किसान लोग, उनको उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, बंद रोकते हैं उनको कि अभी आप ज्यादा बनाओ नहीं। अमेरिका से एक भक्त आए थे तो वो बता रहे थे हमें एक बार कि अमेरिका के सरकार ने उनके किसानों को एक भेंट दिया कि इस साल आप कोई भी आप उत्पादन मत करना अनाज का, आप खेती में कुछ भी काम नहीं करना, एक साल के लिए आप छुट्टी ले लो, और हम आपको पैसा दे रहे हैं छुट्टी लेने के लिए। आप हवाई जाइए, बर्म्यूडा जाइए, कोई दूसरे यूरोप में जाइए, लंदन जाइए, इधर उधर घूमिए, ऐश करिए, लेकिन खेती मत करिए, क्योंकि हमारे पास इतना अन्न हो गया है और अभी रखने के लिए जगह नहीं है। हमारे गोदाम भी सारे भर भर गए हैं, अभी कोई जगह नहीं रहा, तो और उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल पैसे ले लो हमसे, और जितनी आपकी खेती है उस हिसाब से हम आपको पैसे देंगे। कम खेती है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा, और आप जाके ऐश करो। तो वास्तव में अमेरिका सरकार ऐसे कर रही थी और करती भी है। क्यों? अगर उनका अनाज उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे उसका? कभी उनके मन में शायद ये विचार नहीं आता है कि गरीब देशों को क्यों ना मुफ्त में दे दें? इतने सारे देश हैं जहां अनाज की कमी है, उनको देने में क्या खराबी है? लेकिन नहीं, ये भावना नहीं आती है। ये है असुरी प्रवृत्ति, और असुरी प्रवृत्ति, ये सबसे बड़ा देश असुरी प्रवृत्ति का उदाहरण पेश कर रहा है। यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेत रोजनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तत अनुवर्तते। जैसे जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है, श्रेष्ठ देश रहता है, श्रेष्ठ कौम या समाज रहता है, दूसरे देश कौम व्यक्ति उसकी नकल करते हैं। तो आजकल अमेरिका सबसे सर्वोच्च पद पर है, सभी लोग अमेरिका की नकल करते हैं, उनके से फैशन, कपड़े, जूते और बोलने का ढंग, सिनेमा, टीवी और तकनीकी ज्ञान, सब कुछ। इसलिए इतना धूमधाम मच गया आजकल यहां भारत में। अभी कोई सज्जन आए हैं भारत में, टूर कर रहे हैं सज्जन, तो हालांकि उनका जो चरित्र है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे कार्य भी किए हैं, लेकिन फिर भी जब आते हैं ऐसे देश के प्रतिनिधि बनकर आते हैं, तो ये असुरी प्रवृत्ति का देश है, असुरी भाव को जगत भर में फैला रहा है। और क्योंकि ये टेलीविजन वगैरह है तो और अच्छे ढंग से फैला सकते हैं इस भाव को। तो लोग जब देखते हैं कि ये जो अपने लिए हमें सब कुछ रखना है, दूसरों को कुछ नहीं देना है, तो ये भावना बहुत गलत है। इसकी वजह से ये तथाकथित अभाव पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये जो अमेरिका की परिस्थिति ऐसी है कि भविष्य में जाकर इनको बहुत कष्ट होने वाला है, क्योंकि अभी अपना इतना वो जमा करके रखते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं, कल ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब उनको भी ऐसी चीजों की कमी होगी, क्योंकि ये भी भगवान के नियमों का उल्लंघन है। इस तरह से कृत्रिम कमियां पैदा की जाती हैं, और ये झूठा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है सारे पृथ्वी भर में कि अनाज की कमी है। भारतवर्ष में भी कोई कमी नहीं है अनाज की। सारे कितने अभी जनसंख्या होगी भारत की, 10 करोड़ हो गए, नहीं कितना, 100 करोड़ हो गई ना, 100 करोड़ हो गए अभी पिछले ही साल में, ऐसा ऐसी खबर आया कि 100 करोड़ जनसंख्या हो गई, आबादी हो गई। और इसके बारे में लोग बहुत शोक कर रहे थे कि हमें कुछ कुछ करना चाहिए, जनसंख्या को कम करना चाहिए, और फिर न जाने क्या क्या गर्भपात, ये वो बहुत सारे चीजें उपाय सोचते हैं। जब भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में हम गायनेकोलॉजिस्ट, अर्थात जो क्या कहते हैं हिंदी में गायनेकोलॉजिस्ट को, जो 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 मतलब बच्चे का जन्म वगैरह करवाते हैं, वो डॉक्टर, स्त्री प्रसूति प्रसूति गृह के डॉक्टर जो होते हैं, खैर आप समझ गए। तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो क्योंकि हम ये हॉस्पिटल बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर चलाते हैं, तो वहां हॉस्पिटल में गर्भपात नहीं होता, फैमिली प्लानिंग का कोई हम सलाह नहीं देते लोगों को। तो ऐसे डॉक्टर चाहिए थे जो कि गर्भपात नहीं करने के लिए तैयार हो और हमारे सिद्धांतों के अनुसार अपना कार्य करने के लिए तैयार हो। तो बड़े से बड़े गायनेकोलॉजिस्ट आए वहां इंटरव्यू के लिए। तो मेडिकल प्रश्न तो दूसरे पूछ रहे थे, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रश्न पूछ रहे थे, और हर एक डॉक्टर को हमने ये पूछा कि आप गर्भपात करने के लिए, बंद करने के लिए तैयार हैं या नहीं, आप करते हैं कि नहीं। सभी लोगों ने प्राय कहा हम करते हैं, और जिन लोगों ने कहा हम नहीं करते, हमें दूसरे ओर से मालूम पड़ा कि वो करते हैं। तो खैर, कई ऐसे लोग थे जो तर्क करने लगे इंटरव्यू में कि गर्भपात हमें क्यों बंद करना चाहिए, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, अगर हम गर्भपात नहीं करेंगे तो फिर ये लोगों की संख्या कंट्रोल कैसे होगी। तो हमने इंटरव्यू था तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन एक ही शब्द उनको जवाब दिया, अगर जनसंख्या ज्यादा हो गई है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है, और इसके लिए अगर आपकी हत्या करें तो ठीक है, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई है तो आपको खत्म करना चाहिए, आपको खत्म करें तो आपको कैसा लगेगा? तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई कहे कि जनसंख्या बढ़ रही है, चलो इनको खत्म कर दो। तो उसी तरह से जब आपको अच्छा नहीं लगता तो छोटे बच्चे को क्यों अच्छा लगेगा जो कि मां के गर्भ में है? उसमें और आप में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि आप हाथ उठाकर अपने आप को आपकी रक्षा कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, वकील को ला सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, अखबार में जाके कुछ बोल सकते हैं। बेचारा बच्चा जो गर्भ में है वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता, उसके हाथ पैर बहुत छोटे हैं, बहुत कमजोर है, बुद्धि विकसित नहीं है, इसलिए आप उसकी हत्या करोगे जनसंख्या को कम करने के लिए। लेकिन आपकी हत्या करने जाए जनसंख्या कम करने के लिए तो आप तो शोर मचाओगे। तो ये कैसा अन्याय है, ये कैसा तर्क है? ये जनसंख्या ज्यादा हो गई है ये तो बहुत एक झूठा सिद्धांत आजकल पैदा कर रहे हैं लोग। जनसंख्या जितनी भी हो जाए, प्रकृति माता, पृथ्वी माता पर्याप्त मात्रा में जो भी चाहिए हमें वो दे सकती है, लेकिन हमें भगवान के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। समस्या हमारी अधिक जनसंख्या की नहीं है, समस्या हमारी धान्य के अभाव की नहीं है, समस्या केवल एक है कि हम भगवान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बताते थे कि संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने प्रचुर मात्रा में सब कुछ दिया है, केवल एक चीज की कमी है और वो है कृष्ण भावना। बस ये चीज अगर आ जाए तो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मनुष्य जाति के लिए और सारे 84 लाख योनियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं। ये सारे सब झूठे प्रोपेगेंडा सरकार और कंपनियां वगैरह सब दे रहे हैं क्योंकि उनके वो सब उनका स्वार्थ इन चीजों में है। तो इसलिए जब समाज में भगवत भावना होती है तो इस तरह से सारे नेचुरल या प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो इतने हो जाती हैं कि उनको पता नहीं चलता कि इनसे क्या करना चाहिए। जैसे कि वृंदावन में हम देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो अगले दिन नंद महाराज ने नंदोत्सव मनाया और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया। सारे ब्रजवासी आए, धूमधाम मचा वहां, बहुत ही अच्छे ढंग से उस उत्सव को मनाया गया, हर्ष उल्लास की सीमा नहीं थी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि किस तरह का ऐश्वर्य वहां था। वहां पर नंद महाराज ने लाखों लाखों गाय दान में दिए ब्राह्मणों को। और कैसे गाय दिए, ऐसे नहीं कि जो दूध देना बंद कर गए सूखी गाय, और जो बूढ़े हो गए लंगड़े हैं और जो अंधे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल अच्छे नवयुवक नव युवती जो गाय हैं उनको दिए, दुधार गाय। और हर एक गाय के ऊपर सोने के आभूषण, शुद्ध सोने के आभूषण और रेशम के कपड़े, उनके सिंगों के ऊपर भी सोना, उनके चरणों में भी सोना, नाना प्रकार के हार, उनके ऊपर हल्दी तेल इत्यादि दूसरे धातुओं के मिश्रण का बना हुआ लेप, ऐसे गाय लाखों की संख्या में दिए। और दान में भी ब्राह्मणों को दिया हीरे मोती वगैरह वगैरह, अनाज वगैरह के पहाड़ पड़े थे और हर एक ब्राह्मण को ऐसा अनाज का और रत्नों का पहाड़ दे दिया। और इतना ही नहीं, जब वहां खेल चल रहा था तो गोप गोपियों के बीच में वहां पे दही फेंकने का और नाना प्रकार के फल फूल फेंकने का फेंकने की स्पर्धा आरंभ हो गई, हंसी में, केवल ऐसे हर्ष उल्लास में। इतनी दही वहां थी, दही घी वगैरह, कि जैसे नदी के समान बह रहे थे। आजकल की समस्या, आजकल के जमाने में ऐसे हो सकता है? तो देखिए, ब्रजवासी, उनके यहां कोई बड़े फैक्ट्री नहीं थे, नोट छापने की कोई फैक्ट्री नहीं थी, ना ही कोई लोहे का इसका उसका कोई फैक्ट्री था, ना ही उनके पास कोई बड़े बड़े इतने मोटर कार थे, क्या कुछ नहीं। वो क्या करते थे, केवल गायों का पालन करते थे और थोड़ा बहुत कृषि कर लेते थे, और थोड़े बहुत जो ब्राह्मण थे वो जाके पूजा पाठ करते थे, ज्योतिष थे, पुजारी थे, कभी 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 कभार कुछ प्रवचन दे लेते थे, हरि कथा करते थे, गीत गाते थे। ये था, सरल सा जीवन था वृंदावन में। लेकिन ऐसे अवस्था में भी इतना ऐश्वर्य, प्रभुपाद जी बताते थे यही अंतर है इतिहास के भारत में और आज के भारत में। वहां लोग कृष्ण भगवान को या भगवान को केंद्र में रख के सरल जीवन यापन करते थे, कृषि करते थे और गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे, इसलिए इतना ऐश्वर्य आ गया। लेकिन आजकल हम गौ माता की उपेक्षा करते हैं, निरादर करते हैं, बल्कि हत्या करते हैं, और सरकार भी ऐसे बूचड़खाने खोलते हैं, कत्लखाने खोलते हैं, जहां लाखों की संख्या में गायों की हत्या होती है। और इसलिए हमारे आजकल भारतवर्ष में किसान की क्या अवस्था हुई है, किसान बेचारे आजकल कितने गरीब लग रहे हैं अगर जाएंगे तो आप, ऐसी अवस्था क्यों हुई है? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं और गाय की हत्या करते हैं और सरल जीवन को हमने छोड़ दिया है, इसलिए तथाकथित गरीबी आती है। क्योंकि सरकार ही पापियों में से सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार अधिकार देती है बूचड़खानों को खोलने के लिए, जहां पे लाखों की संख्या में गायों की हत्या होती है। कोई हमें बता रहे थे कि शायद कितने 40,000 गाय प्रति वर्ष प्रति महीने, पता नहीं कितने, बहुत ऐसी बड़ी संख्या है जो गाय हर रोज भारतवर्ष में जिनकी हत्या होती है। प्राय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, संविधान, देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि गो हत्या धीरे धीरे से बंद करना चाहिए, और हर एक राज्य सरकार को इसमें कानून पढ़ के इसको लागू करना चाहिए हर एक राज्य में। थोड़े बहुत राज्य तैयार हैं, केवल केरल और बंगाल के राज्य सरकार इसमें बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। और इसलिए हालांकि दूसरे राज्य गो हत्या बंद करने के लिए थोड़ा बहुत भी तैयार हैं, फिर भी ऐसी परिस्थिति आजकल हो रही है तथाकथित निरपेक्षवाद के समय में कि गो हत्या बंद करने के लिए भी इतना विरोध आ रहा है, ये बहुत शोक की बात है। तो इसलिए ये सब गड़बड़ होता है। एक जगह हमने पढ़ा कि अगर बांग्लादेश में आपको सरकार के विरुद्ध में कोई क्रांति पैदा करनी है तो इसके लिए आसान तरीका है, केवल ईद के समय जो गायें यहां से चोरी करके बंगाल से ले लिए जाते हैं बॉर्डर के उस पार, वो बंद कर दो। उतना केवल मांस का बंद आ जाएगा उस दिन जहां पर वो इतने लाखों की संख्या में गायों को काटते हैं बांग्लादेश में। अगर वो बंद हो जाए, जब वो देखेंगे कि मार्केट में कोई मांस नहीं मिल रहा अभी, तो क्रांति हो जाएगी, उधर उत्पात हो जाएगा। सरल सा तरीका है। तो कल्पना कीजिए कि कितने लाखों की संख्या में गाय लिए जाते हैं उनकी हत्या करने के लिए। तो ऐसे अवस्था में गरीबी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, तो और क्या होगा? केवल गाय की रक्षा करने से कितना ऐश्वर्य होता था, हमने वृंदावन के उदाहरण से देखा। और भी एक उदाहरण मन में आ रहा है। राजा अशोक के समय के आसपास राजा बिंबिसार नाम के राजा थे। तो राजा बिंबिसार, इनके राज्य में भी बहुत ऐश्वर्य था, क्योंकि गोसेवा भी होती थी। तो बड़े बड़े जो वैश्य हुआ करते थे, जो कि गोपालन करते थे, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो वैश्य का कार्य होता था गाय की रक्षा करना, कृषि करना और वाणिज्य, सादा ट्रेडिंग करना। तो वहां एक गोपति थे जो कि गौशाला चलाते थे अपना, बहुत बड़े संख्या में उनकी गायें थी। तो जैसे एक बार उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने राजा बिंबिसार को निमंत्रण किया अपने घर भोजन के लिए। तो यह प्रथा है कि जिस स्तर का अतिथि रहता है उस तरह से उसका सत्कार करना चाहिए। अगर कोई राजा किसी के घर में आए तो उस ढंग से सत्कार करना चाहिए। जैसे आजकल अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, तो सबसे बड़ा देश, सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जब आता है तो उस ढंग से सत्कार किया जाता है। तो इसीलिए उस लेवल का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। तो राजा बिंबिसार तो राजा था, इसलिए उस व्यक्ति ने ऐसे ही ढंग से उसका स्वागत किया। और स्वागत का वर्णन आता है, कैसे स्वागत किया? उन्होंने रास्ते में हजारों की संख्या में ऐसे रत्न रखे जिनके केवल चमकने से एक उजाला जैसे हो गया, और उन्होंने उनको अंधकार में खिलाया। लेकिन अंधकार में उजाला कैसे आ रहा था? केवल रत्नों से। इतने सारे रत्न रखे थे अलग अलग जगह कि केवल रत्नों के चमक से, उनके प्रकाश से वो ऐसे दिन के समान बना दिया उन्होंने। और वो राजा नहीं थे, वो एक वैश्य थे। तो एक वैश्य के पास, एक गोपालक के पास इतना धन ऐश्वर्य था केवल गाय की सेवा करने से। तो देखिए, जब गौ सेवा और कृषि होती थी और भगवान के नियम के अनुसार जीवन बिताया जाता था तो कितना ऐश्वर्य होता था। और आजकल हम आर्थिक विकास के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खड़े कर रहे हैं, फिर यहां से गाय बाहर भेज रहे हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ते जा रही है। उधर महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सारे नाना प्रकार के समस्याएं आती हैं। तो अगर हमने केवल भगवान के नियम के अनुसार कार्य करना शुरू किया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब प्रकृति हमें पर्याप्त मात्रा में अनाज फल इत्यादि देती है तो मासूम पशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वास्तव में कोई अनाज नहीं है, कोई खाने के लिए कोई शाकाहारी चीज नहीं है, तब अगर हमारे मृत्यु का प्रश्न आता है तब और केवल तब हम मांसाहार कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग मांसाहार केवल अपने जिह्वा के लालसा के लिए करते हैं, अपने जीभ को संतुष्ट करने के लिए। ना, ये कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, ये बहुत लंबा विषय है मांसाहार का, कभी और गहराई में इस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन कहना इतना काफी है कि इस समय हमें ये बातें समाज में फैलानी चाहिए कि जब समाज में, हमारे देश में, पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में सब शाकाहारी भोजन उपलब्ध है तो इतना सब पाप करने की हमें क्या आवश्यकता है। सात्विक आहार लेकर अपने चित्त को सात्विक बनाएं और सात्विक चित्त से हरि नाम का जप कीर्तन करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और भगवान के धाम में लौट कर चले जाएं। सीधी सी बात है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
करने वाले बोलते हैं हम आदत से मजबूर है।
हाँ,
मांसाहार करने वाले बोलते हैं बंद करो, वो लोग बोलते हैं हम आदत से मजबूर हैं, हम खाएंगे।
हाँ, पाप के फल खाने के भी आदि है, मजबूर है, इसलिए उनको पाप का फल भी लेना पड़ेगा। अगर केवल इतना बोलते हैं कि हम आदत से मजबूर हैं तो कैसे आदत से छूटना है वो सीखना चाहिए। केवल आदत से मजबूर हैं इसलिए हम करते रहेंगे तो उसका फल भी प्राप्त करते रहेंगे। अगर चोर कहेगा मैं चोरी करने के लिए आदत से मजबूर हूं, चोरी करता रहूंगा, करो लेकिन दंड भी खाते रहो, जेल में जाते रहो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो कोई सही बात या उपदेश सुनने से, केवल सुनने मात्र से उस बात को वो सुन लेता है, अपने जीवन में उसका आचरण कर लेता है। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, पहले श्रेणी का, जो एक बार सुनने से सही बात को मान लेता है। दूसरा आदमी सोचता है कि नहीं, जब किसी दूसरे आदमी के बारे में ये देखूंगा मैं कि चोरी करने से उसकी पिटाई होती है तब मैं सीख जाऊंगा, तो देखता है कि दूसरे आदमी की पिटाई हो रही है चोरी करने के बाद, फिर सीख जाता है। अर्थात दूसरे के उदाहरण से सीख जाता है, केवल सुनना उसके लिए काफी नहीं है, दूसरे के जीवन में उदाहरण सीखना होता है। तीसरे श्रेणी का आदमी होता है, वो कहता है दूसरे की पिटाई हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मेरे पिटाई नहीं होगी। तो चोरी करता है, उसकी पिटाई होती है, फिर तौबा तौबा करके बंद कर देता है। लेकिन चौथे श्रेणी का आदमी भी होता है, उसको बताया जाता है चोरी मत करो, अच्छा नहीं है, मानता नहीं है, देखता है कि दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, बंद नहीं करता, खुद चोरी करता है फिर पीटा जाता है फिर भी बंद नहीं करता, वो चौथा श्रेणी का आदमी। तो अगर ज्यादा ये लोग चौथे श्रेणी में आना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनको मांस खाना ही है और उसका दंड उनको स्वीकार है, तो फिर ठीक है, वही सही।
हमारे पिताजी के पास एक गाय थे, वो गाय को हमारे पिताजी ने भेज दिया है, लेकिन भेज दूसरे आदमी को भेज दिया, गाय को
बेच दिया।
हाँ, बेच दिया है, और वो दूसरा आदमी और दूसरों को भेज दिया है, वो बाद में उसका हत्या हो गया, गाय का हत्या हो गया, उसका पाप तो हमको लग सकता है क्या?
लगेगा निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए गाय को ऐसे बेचना नहीं चाहिए। हम अपनी माँ को बेच देते हैं क्या बाहर? जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम माँ को क्या बेच देते हैं कि अभी माँ कुछ कार्य नहीं करेगी? तो गौ हमारी माता है, अभी गाय देना बंद, दूध देना बंद कर रही है, इसलिए हम बेचेंगे तो ये पाप है। खास करके जब आजकल के जमाने में जब हम देखते हैं कि आगे चल के इसकी हत्या होगी, लेकिन बेच केवल एक अवस्था में कर सकते हैं, जब सामने वाला आपको गारंटी है कि वो उसको बेचेगा नहीं। ऐसे जगह आप दें जहां आपको निश्चित रूप से गारंटी है कि वो या तो खुद कत्ल नहीं करेगा गाय की, या आगे चल के कहीं बेचेगा नहीं, तब आप देंगे तो ठीक है। लेकिन आपके बेचने के बाद अगर किसी और व्यक्ति ने भी उसकी हत्या की तो आप उसके भागीदार हो जाते हैं पाप के।
सच्चे दिल से ऐसे मतलब दान दिया जाए गाय किसी को, लेकिन मालूम नहीं कि सामने वाला मतलब उसको पाल मतलब उसको रखना चाहता है, और बाद में अगर उसने उसकी हत्या कर दी
तो भी पाप आ जाएगा। इसलिए दान देते समय आंख खोल के दान देने चाहिए, आंख कान खुले होने चाहिए, पूरी तरह से जानकारी होने चाहिए कि किसको हम दान दे रहे हैं और सामने वाला उस दान का प्रयोग कैसे करने वाला है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तीन प्रकार के दान होते हैं। तमोगुण का दान वो होता है जो समय देश काल पात्र को न देखते हुए दिया जाता, अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य समय दिया जाता है, वो तमोगुण में दान है। जो रजोगुण में दान होता है वो अपने नाम कमाने के लिए, इज्जत के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, उसके लिए किया जाता है, वो रजोगुणी दान है। और जो सत्वगुणी दान होता है वो दान होता है जो कि योग्य व्यक्ति को योग्य समय पर सही कारण के लिए दिया जाता है और बिना कोई प्रतिष्ठा की अपेक्षा से किया जाता है, वो सत्वगुण का दान है। तो अयोग्य व्यक्ति कौन है? जो अयोग्य कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए उस दान का प्रयोग करेगा। तो इसलिए हमें गारंटी होनी चाहिए कि जहां हम गाय की को दान दे रहे हैं वो लोग वास्तव में गाय की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, नहीं तो उसके पाप के भागीदारी हम अवश्य बन जाएंगे। हरे कृष्ण।
जो मांस खाते हैं वो कहते हैं कि मांस सिर्फ शरीर खाता है, आत्मा थोड़े ही खाता है, पूछते हैं इसका क्या जवाब?
तो शरीर को ही दंड मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको अवश्य बताना चाहिए, ठीक है शरीर ही खाता है। अब सही बात है कि आत्मा मांस नहीं खाती, तो दंड भी तो शरीर को ही मिलता है। फिर दंड आता है तो क्यों घबराते हो? दंड आता है तो क्यों हम हिचकिचाते हैं? क्यों नहीं स्वीकार करते? हम किसी का खून करते हैं और कोई कहे केवल शरीर ने खून किया, तो हम कहें ठीक है तो आपके शरीर की हत्या होगी, बस हम आपको फांसी पर चढ़ाएंगे, केवल शरीर फांसी पर चढ़ेगा, आत्मा नहीं चढ़ेगा, तो उसको मंजूर होगा? नहीं होगा। तो उनको यही बताना चाहिए। ऐसे सारे कुतर्क करते हैं लोग, ऐसे मांसाहार करने वाले, वो जानते हैं वास्तव में कि गलत है, लेकिन केवल तर्क करने के लिए ये लोग तर्क करते हैं। हृदय से उनको मालूम है कि करना नहीं चाहिए, दूसरों प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन केवल दूसरों के सामने मानना नहीं चाहते, उनको अहंकार को चोट लगता है कि हम दूसरों के सामने गलत ठहराए, इसलिए कोई ना कोई ऐसा कुतर्क करते हैं। लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको बराबर जवाब देकर रहना चाहिए, उनके ही जवाब का उनको ही उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो बंद नहीं करने वाले हैं वो नहीं करेंगे, जितना भी अच्छे आप तर्क उनको प्रस्तुत क्यों ना करो। हरे कृष्ण।
पर बेलगांव में ही सामरा के पास एक गांव है, वहां हजारों गायों की हत्या हुई थी, लेकिन बेलगांव वालों ने, कोई मुसलमानों का त्योहार था कि क्या था, वहां पर हजारों हजारों गायों की हत्या हुई थी, लेकिन किसी बेलगांव वालों को हमने सुनने में नहीं आया, और बराबर उन्होंने उनको मदद किया गाय देने में, 3-4 साल पहले की बात है। सामरा के पास ही अपने इसी में ही आता है, बेलगांव में आता है, और हजारों गायों की हत्या हुई थी, और वो ऐसा सुनने में आता है कि वो जहां पर हत्या हुई थी वो जगह बिल्कुल बंजर हो चुकी है।
इसलिए केवल वो जगह नहीं लेकिन सारे बेलगाम को, शहर को, देश को इस पाप का भागीदार बनना चाहिए, बनना ही पड़ेगा।
हत्या हुई है तो बारिश कैसा होगी?
आजकल यही समस्या है समाज में, जिन चीजों के लिए हमें प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, हड़ताल वगैरह करने चाहिए, उन चीजों के लिए नहीं करते हैं। जिन चीजों के लिए नहीं करना चाहिए उधर बहुत आतुर होते हैं, सामने जाके मुर्दाबाद जिंदाबाद करने के लिए। कोई बिल क्लिंटन आता है तो करते हैं, कोई और आया तो और कुछ करते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए करना चाहिए उसके लिए लोग नहीं करते हैं, कुछ हाथ ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे इसलिए तो इस देश में ये समस्याएं हुई है, एक के बाद एक आकर लोग संस्कृति के ऊपर कुचलाकर उसको कुछ तोड़ मोड़ करके चले गए और हम बैठते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं है। कभी कभी क्षत्रिय भाव का होना भी आवश्यक होता है इन चीजों को बनाए रखने के लिए, नहीं तो ले केवल लोग केवल आके अब भक्ति भक्ति करके हम देखते रह जाएंगे। तो ये सही चीज होती है, इसलिए ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, सब तरह के लोग चाहिए। तो आवाज उठाने वाले लोग आजकल कम है, यही समस्या है। इसलिए इस बात का प्रचार हमें समाज में अच्छे ढंग से करना चाहिए ताकि लोग समझें कि क्या पाप हो रहा है और इसके बेलगाम में सारे जो कष्ट हुए हैं वो भी रहेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा।
गाय का हत्या हो रहे हैं तो हम किस प्रकार के मेथड से बंद कर सकते हैं?
कानून भी कानून के सहारा पहले लेना चाहिए, पहले ये सब जान लेना चाहिए कहाँ ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर कानून है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, वैसे तो कानूनी तरीका है। और ऐसे भी कई लोग हैं, संस्थाएं भी हैं, जब जो क्या करते हैं कि जब कत्लखाने ले जाते हैं उनको छुप छुप कर उनको रोकते हैं रास्ते में। हम मिले थे थोड़े लोगों से थोड़े महीने पहले, वो यही काम करते हैं। वो देखते हैं कि जहां जहां से लोग ले जाते हैं उनको मालूम है कौन कौन ऐसे करते हैं कार्य, अमुक इलाके में होते हैं, और वहां से जाकर वो लोग उनके ट्रक रोक देते हैं, और कभी कभी जान पे भी खतरा लगाकर उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अंदर से तलवार वगैरह लेकर चलते हैं ट्रक में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई हमको रोकने वाला है। फिर उनको रोक के गाय को छुड़ाते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में जो पहले से वो कंप्लेंट रख के फिर पुलिस उनको मुक्त कर देती है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ भी है वास्तव में। लेकिन ये लोग इतने क्रूर हैं, क्योंकि कानून भी अपने कानून बनाने वाले भी ऐसे ही मंद बुद्धि के हैं, उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि अगर गाय का स्वास्थ्य ठीक है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते, लेकिन गाय का स्वास्थ्य ठीक न हो तो मार सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, देवनार में बंबई के बाहर जो बूचड़ खाना है, पहले गाय की टांग तोड़ देते हैं, टांग तोड़ गई तो अभी स्वस्थ नहीं है तो फिर उसको मारते हैं, ऐसे सब निकालते हैं तरीके, असुरी प्रवृत्ति, घोर असुरी प्रवृत्ति। इसलिए इसका प्रचार अच्छे ढंग से होना चाहिए, लेकिन जब तक हम लोग खुद अपने गोसे व अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज इतनी लोगों के हृदय तक छुएगी नहीं। इसलिए धीरे धीरे से हम लोगों को भी गोसेवा करने की जो है वो धीरे धीरे करना चाहिए, जैसे जैसे हमारी व्यवस्था सेटल हो जाएगी। एक बार हमने अच्छा गौशाला बना लिया।